It's nice to see you again.
आप सबों को देखकर बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है.
And thank you for the very warm welcome.
और अच्छे स्वागत के लिए धन्यवाद.
Sometime I pray something like this.
और कुछ समय पहले मैंने इस प्रकार प्रार्थना किया.
Lord, I confess that I love you more than anybody and more than anything else.
प्रभु मैं ये आज confess करता हूँ, मानता हूँ कि प्रभु किसी भी चीज से बढ़कर, किसी व्यक्ति से बढ़कर मैं आपसे प्यार करता हूँ.
So I consider somebody is good to reaffirm our earnest desire in our heart to love Jesus.
और कई बार ये इच्छा को, जो परमेश्वर से प्रेम करने की इच्छा है, उसको बार बार व्यक्त करना बहुत अच्छी बात है.
Occasionally what we believe and what we desire we can also proclaim and affirm.
और जो हम विश्वास करते, जो मानते हैं, उसको अपने मुंह से घोषित करना है, उसको निश्चित रूप से बताना अच्छी बात है.
In 1 Peter chapter 1
पहला पत्रस पहला अध्याय
in verse 8
उसका आठ वचन.
I love to read this phrase in that passage.
और इस प्रकार मुझे इसको पढ़ना अच्छा लगता है.
It reads like this. And though you have not seen him, you love him. And though you do not see him now, you believe in him. You greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory.
उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है.
इन अ वे दिस इज द एसेंस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ.
और ये जो मसीही जीवन का मूलभूत बात है.
क्रिश्चियन लाइफ एज वी ऑफन से इट इज नॉट ए रिलीजियन.
और जैसे हम खासकर कहते हैं कि मसीही जीवन एक धर्म नहीं है.
इट्स नॉट ऑल अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ चर्च और एन ऑर्गेनाइजेशन.
और एक चर्च या एक कोई संस्था के एक मेंबर बनना, उसके बारे में मसीहत नहीं है.
इन मोर देन एनीथिंग इट इज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट.
और किसी भी चीज से बढ़कर यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध, ये एक मसीहत है.
सो दैट्स व्हाट पीटर इज ट्राइंग टू टेल हियर दैट इवन दो यू हैव नॉट फिजिकली सीन जीसस, ही इज सेइंग यू लव हिम स्टिल.
और पत्रस यही कहना चाह रहा है कि अगर हमारी आंखों से हमने उसको नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं.
इवन दो यू हैव नॉट फिजिकली पीटर हैव फिजिकली सीन जीसस बट He's saying, even though I have seen him physically also, but you have not seen, but you are able to believe in him.
और पत्रस ने खुद यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो कहता है कि तुमने उसको नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास करते हो.
And there is an accompanying joy which is inexpressible.
और उसके साथ साथ एक अद्भुत आनंद है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते.
Full of glory.
और पूरी महिमा के साथ भरा हुआ.
The joy that accompany when we commit ourselves to love Jesus, that joy is inexpressible.
और जब हम यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए अपने आप को समर्पित करते, उसके साथ जो आनंद आता है वो वर्णन से अपार है.
Certain things inside us cannot be expressed in languages.
और कुछ ऐसी चीजें हमारे भीतर जो है वो भाषा के अंदर हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते.
So Christian joy is also something like that.
और मसीही जो आनंद है वो भी इस प्रकार होता
even,
है.
Even with our best efforts, we can only partially we can express to
others. और हमारे उत्तम प्रयत्नों के साथ भी कुछ खास कर हम उसको कुछ अंश तक ही उसको व्यक्त कर पाएंगे.
But when we love Jesus, when you are devoted to him, the accompanying joy is often is indescribable.
और जब हम परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह को समर्पित अपने आप को करते हैं, तो उससे प्रेम करने के द्वारा जो आनंद आता है वो हम वर्णन नहीं कर सकते.
We probably know the life of Fanny Crosby.
हम फैनी क्रॉस्बी के जीवन के बारे में जानते हैं.
Who had wrote hundreds of thousands of hymns.
और बहुत सारे हजारों भजन या गीत उन्होंने लिखे हैं.
Some of them we regularly sing in this church.
और इस कलीसिया में हम कई बार उन गीतों को गाते हैं.
For example, Blessed Assurance.
और वो लिखा है कि एक धन्य आशा.
I am thine, O Lord.
मैं प्रभु तेरा हूँ.
To God be the glory.
और परमेश्वर को केवल महिमा मिले.
Safe in the arms of Jesus.
और मैं यीशु मसीह की बाहों के अंदर सुरक्षित हूँ.
He hideth my soul.
और और मेरी जो जी मेरा प्राण है उसको वो छुपा लेता है अपने आप में.
When we sing those songs, we can know this is written by someone from the heart it has flown out.
और हम जब इस गीतों को गाते पढ़ते हैं तो सोच पाते कि लिखे हुए पूरे हृदय की गहराई के द्वारा.
Her love and devotion to Jesus Christ, he was trying to express in hymns she wrote.
और उन भजनों के द्वारा अपने प्रेम को, अपने जो अपना जो समर्पण है, उसके द्वारा उन्होंने इन गीतों को लिखा है.
Fanny Crosby, when she was born in her earlier months, earlier weeks after she was born, she was sick.
और फेनिकॉस भी जब उनका जन्म हुआ, उनके बचपन के जन्म के कुछ कुछ हफ्तों के अंदर वो बीमार हो गई।
एंड समबडी हु somebody who acted as a medical doctor,
और उनके वहां पे एक मेडिकल डॉक्टर थे जो उनके उनकी चिकित्सा कर रहे थे।
He was a cheat actually, he was not a doctor really.
और वो डॉक्टर नहीं थे।
He pretended to be a doctor and treated her.
उन्होंने दिखावा किया कि वो एक डॉक्टर है और उनको उनकी देखभाल उन्होंने की।
As a result of that false treatment, Fanny Crosby lost. She became blind entirely when she was about 6 weeks.
और जो छह सप्ताह की जब वे थी और गलत वो डॉक्टर ने उनको वो ट्रीटमेंट दिया, उसकी वजह से उन्होंने आंखों को खो दिया।
But she lived that blind girl. You can imagine somebody is blind from the second month of her birth onward. She lived a very long life. She died, as I remember, just before her 95th birthday.
और दो आप सोच सकते हैं कि वो दो हफ्ते की थी तब से वो अंधी हो गई, लेकिन वो तब तक एक लंबी जिंदगी को उन्होंने जिया जो 95 साल की थी, तब तक उन्होंने जीवन को जिया।
All those years as a blind person.
सारे वर्ष उन्होंने एक एक अंधे व्यक्ति के समान जिंदगी को बिताया।
So during that blind life, she wrote this beautiful, lovely hymns.
और इस अंधे जीवन को जब वो जी रही थी, वो एक सुंदर गीतों को उन्होंने लिखा।
And one speciality about her was she was never bitter against that doctor who cheated her.
और उसके जीवन की खासियत ये थी कि वो कभी भी वो जो डॉक्टर ने उसको जो धोखा दिया था उसके प्रति कभी भी उसने कड़वाहट नहीं रखी थी।
She had always a heart of forgiveness towards that person.
और उस व्यक्ति के प्रति उसके मन के अंदर हमेशा एक माफी देने वाला मन था।
She never harbored bitterness against that person who made her lifelong blind.
और जिस व्यक्ति ने उसको पूरी जिंदगी भर के लिए अंधा कर दिया, कभी भी उसके प्रति कड़वाहट उसने मन में नहीं रखी।
Once one of the preacher said some words to her.
और एक प्रचारक ने उससे कुछ ऐसे शब्द कहे।
Something like this.
इस प्रकार कहा।
It's sad that God has gifted you with so many gifting, skills in writing hymns, etc. But sad that God did not permit you to with the sight.
और उन्होंने कहा बहुत दुखद बात है कि परमेश्वर ने आपको इतने अच्छे तालन दिए, इतने अच्छे गीतों को आप लिखते, लेकिन परमेश्वर ने आपको आंखें नहीं दी आपको देखने के लिए।
But the response which Fanny Crosby was amazing.
और उसका फ्रेनी क्रॉस्बी का जो उत्तर था बहुत ही अद्भुत महा था।
Remember she had when she was born in this world she saw a light. Her eyes saw light only just for 6 weeks.
और जब वो जन्म उनका हुआ तो सिर्फ 6 सप्ताह के लिए उनकी आंखों ने रोशनी को देखा।
So she told this preacher that suppose if I had a choice when I was born.
और उसने उस प्रचारक को कहा कि अगर मेरे पास जब मैं जन्मी तब मेरे पास चुनाव होता तो।
And if God asked me to express my desire.
और अगर परमेश्वर ने मुझे पूछा होता कि मेरी इच्छा को उसके सामने व्यक्त करूं,
I would have prayed something like this.
और मैंने इस प्रकार शायद प्रार्थना किया होता।
Lord, let me be born as a blind person.
मैंने ऐसे प्रार्थना की प्रभु मुझे अंधा ही प्रभु पैदा होने देना।
But she was not born as blind. She was seeing light for about 6 weeks.
और वो अंधी पैदा नहीं हुई थी, उसने 6 सप्ताह तक रोशनी को देखा।
A reason she said and she added so that when I see Jesus and his face will gladden me first more than anybody.
उसका कहने का मतलब ये था कि जब मैं पहली बार यीशु मसीह को देखूंगी किसी भी चीज से बढ़कर मुझे वो आनंदित करेगा।
Meaning her love and devotion to Jesus was so much. She wanted, when her eyes are opened, she wanted to see the face of Jesus first before anyone else.
और उसका प्रेम और समर्पण यीशु मसीह के लिए इतना अधिक था कि वो परमेश्वर को अपने आँखों से देखना चाहती थी।
That was a quality and a depth of her love and devotion to Jesus.
और यही गुणवत्ता थी उसकी जो मात्रा थी उसका प्रेम और उसका समर्पण जो यीशु मसीह के लिए था।
So that is again a challenge to many of us we all have our own limitation, constraints. But in the midst of all this, those are not excuses saying that I have this, so I am not able to love Jesus.
और हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी मर्यादा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए हम ये बहाना नहीं कर सकते कि मैं यीशु मसीह से इस प्रकार प्रेम नहीं कर सकता।
Fanny Crosby's life speaks to us that whatever may be our limitation, constraint in this world, we all have this ability to be love Jesus and to be devoted to Him. Supremely.
और ये फेनी क्रॉस्बी का जीवन हमको ये प्रोत्साहित करता है कि कोई भी मर्यादा या परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम कर सकते हैं।
Paul expressed that in a different way in second Corinthians chapter 5.
और दूसरी कुरिन्थियों में 5 अध्याय में पौलुस इस प्रकार इसे व्यक्त करते हैं।
14 और 15. For the love of Christ controls us, having concluded this. That one died for all, therefore all died. And he who died for all, so that he who lived might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf.
और दूसरा कुरिन्थी 5:14-15, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सबके लिए सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा.
So he's saying that love of Christ is controlling me.
और वो कहते हैं कि मसीह का प्रेम मुझे नियंत्रित करता है.
Or love of Christ is compelling me.
और मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है.
I mean, there's a genuine love, there's a compulsion.
और ये अगर एक असली प्रेम जहां होता है वो हमें जरूर विवश करता है.
A voluntary, natural compulsion.
और एक स्वाभाविक रूप से बहुत ही साधारण तौर से वो हमें विवश करता है.
To please the one who loved us.
और उसको प्रसन्न करना जिसने हमसे प्रेम किया.
And he's saying that Jesus died for all of us.
और वो कहता है कि यीशु मसीह हम सबों के लिए मरा.
एंड ऑल ऑफ अस हु लिव नाउ विल नो मोर लिव फॉर आवरसेल्फ बट वी विल लिव फॉर जीसस हु डाइड फॉर अस.
और अब जो आज हम जीवित हैं, हम अब अपने लिए नहीं जीते, लेकिन यीशु जो हमारे लिए मरा उसके लिए हम जीवन जीते हैं.
मीनिंग आवर लाइफ कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव टुवर्ड्स जीसस.
इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन एक एक्सप्रेशन हो सकता है जो यीशु मसीह जिसने हमारे लिए प्रेम किया उसको जीने के लिए.
सो दैट इज व्हाई वी ऑफन से दैट संडे इज नॉट द मोस्ट इंपोर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस.
और इसलिए हम खास तौर के कहते हैं कि रविवार का दिन हमारे लिए खास दिन नहीं है.
संडे वी ऑल लव जीसस.
रविवार को हम जरूर ये परमेश्वर से यीशु से प्रेम करते हैं.
Songs of praise and thanksgiving and love.
और धन्यवाद के प्रेम के स्तुति के गीत हम परमेश्वर के प्रति गाते हैं.
And the test can is Monday to Saturday.
लेकिन जो परख जो है वो सोमवार से शनिवार तक होती है.
When we are alone in our own world.
और जब हम अपने दुनिया के अंदर अकेले होते हैं.
So we have that possibility that when you are alone, away from fellowship and brothers and sisters, we can still love Jesus and our life will display that we really people who love Jesus.
और हम ऐसी संभावना हो सकती है कि जब हम अपने संगति से प्रिय भाई और बहनों से दूर होते तब भी हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है.
Jesus told something, you know, if you love me you will keep my commandments.
यीशु मसीह ने इस प्रकार किया, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे.
Jesus did not went around making by force everybody to obey his commandments.
और यीशु मसीह यहां वहां घूमता नहीं रहे दबाव के साथ कि मेरी आज्ञा को मानो सबसे कहते.
Jesus only told, if you love me, you have the option to keep my commandments.
यीशु मसीह ने केवल कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम्हारे पास चुनाव है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे.
So motivation for a godly love is not a fear of hell or a desire to go to hell and heaven.
और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए जो प्रेरणा जो है वो एक नर्क जाने का कोई डर नहीं है.
Motivation for keeping God's commandments is should be our love towards Jesus.
और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का जो प्रेरणा है वो उसकी आज्ञाओं का पालन करना होना चाहिए.
And our motivation to overcome sin is also not the fear of hell, but it should be I love Jesus, therefore I would not want to sin.
और पाप से जयवंत होने की प्रेरणा भी नरक जाने का वो नहीं, लेकिन मेरा प्रेम मेरी जो समर्पण परमेश्वर के प्रति होना चाहिए.
Our obedience to Jesus Christ should be motivated because of our love towards Jesus.
और हमारा जो आज्ञा पालन है उसकी प्रेरणा जो है यीशु मसीह से प्रेम होना चाहिए.
So in Christian life there is nothing compulsion, it is voluntary.
और मसीह जीवन में कोई भी दबाव के साथ जोर जबरदस्ती से नहीं होता, सब कुछ स्वेच्छा से होता है.
We know we all have a danger of being deviated or led astray from our simplicity and devotion to Jesus Christ.
हम हमेशा एक खतरे में होते हैं कि हमारी जो साधारण भक्ति या परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण है उससे हम दूर चले जाए.
In 2 Corinthians chapter 11, 2 and 3.
और दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 2-3 वचन.
Paul is telling.
Paulus इस प्रकार कहता है.
I am jealous for you with a godly jealousy.
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं.
फॉर आई बिट्रोथ्ड यू टू वन हस्बैंड सो दैट टू क्राइस्ट आई माइट प्रेजेंट यू एज ए प्योर वर्जिन.
क्योंकि इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुवारी के समान मसीह को सौंप दूं.
बट आई एम अफ्रेड दैट एज अ सर्पेंट डिसीव्ड ईव बाय हिज क्राफ्टीनेस योर माइंड्स विल बी लेड अस्ट्रे from the simplicity and purity of devotion to Christ.
परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए.
So we can understand devil is constantly putting pressure on us to deviate us from our devotion to Jesus Christ.
और हमेशा हम ये इस बात से समझ सकते हैं, हमेशा शैतान इस दबाव को लाता है कि हमारी जो समर्पण परमेश्वर के प्रति है उससे हमको वो दूर लेकर जाए.
Somehow if he is succeeding in distracting us from our simplicity and purity of our devotion to Jesus Christ, devil has won.
और जो हमारा पवित्र जो समर्पण परमेश्वर के प्रति किसी न किसी तरह से वो हमें वहां से हमारे ध्यान को भंग करने की कोशिश करता है.
And he will most often he will do this by in deceptive ways.
और कई बार वो इस प्रकार करता है धोखे के तरीकों से.
By saying that there are many more other pleasures which are far more enjoyable than our love towards Jesus Christ.
और इस प्रकार वो धोखा देता है कि ऐसे बहुत सारे आनंद हैं जो यीशु मसीह को प्रेम करने के आनंद से बढ़कर है.
So God wants each one of us to be like someone who is engaged.
और परमेश्वर इस प्रकार के प्रेम को चाहते हैं कि जिसकी एक जैसे एक मंगनी हो चुकी है.
Some of us are married, you know, we remember the time when we are engaged to our partner.
यहाँ पे जो विवाहित थे वो देख सकते हैं कि एक समय था जब वो अपने जो पार्टनर थे उनसे वो मंगनी उनकी हुई थी.
Can you ever imagine we are engaged, a wedding is after a couple of months. Can you imagine we think about some other girls?
और अगर मेरी मंगनी हो चुकी तो उस समय के अंदर मुझे पता है कि अब मेरी शादी होने, क्या मैं और किसी के बारे में उस समय में सोचूंगा क्या?
Oh, that my wife thinking about imagining about, you know, someone would be better husband for me.
और उस मंगनी के समय मेरी पत्नी किसी और व्यक्ति के बारे में सोचे कि कोई और लड़का मेरे लिए बेहतर हो सकता है.
We'll be cherishing and imagining and dreaming about and devoted looking forward for that union.
हम पूरी तरह से उस मंगनी के समय के अंदर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करेंगे उस एक होने के समय के लिए.
And that is something which God wants us to even continue even after wedding.
और यही परमेश्वर हमारे विवाह के बाद भी उसको निरंतर करना चाहता है.
Suppose after marriage, after 1 year, you know, there is a very good love between husband and wife.
और सोच के देखिए विवाह के बाद एक साल तक पति और पत्नी के अंदर बहुत अच्छा प्रेम रहता है.
After 1 year, children are born.
और एक साल के बाद बच्चे होते हैं.
And suppose wife is doing everything, you know, maybe cooking food, washing clothes, everything, but her heart is not closely knit to her husband.
और पत्नी जो है घर के सारे काम करती, कपड़े धोना, बर्तन सब कुछ करते, लेकिन उसका हृदय अपने पति के साथ एक नहीं है.
So do you think it's a good marriage?
और क्या हम सोच सकते हैं एक अच्छा विवाह यह है?
Everything is done physically, all things need to be done, not washing clothes, cooking food, all thing happen.
और खाना बनाना, कपड़े धोना, सारी चीजें अच्छी है.
But in heart that closeness, intimacy is not there.
लेकिन वो हृदय के अंदर वो जो एकता या वो जो नजदीकी होनी चाहिए वो नहीं है.
In that physical realm we can understand that.
और हम भौतिक रूप से इस चीज को समझ सकते हैं.
But in the same way in our relationship with Jesus Christ is not something to be over there, is not something to be dimmed. It should be more and more, it should be more brightened.
और ये यीशु मसीह के साथ जो संबंध के अंदर भी ये कमजोर नहीं होना चाहिए, वो और अधिक अधिक और भी तेजस्वी या बढ़ना चाहिए.
Let this be, my dear brothers and sisters, our earnest desire and our aspiration that over the years our love and devotion to Jesus Christ is not diminishing but is magnified.
और बढ़ते समय में हमारे जीवन की एक ही चाहत होनी चाहिए कि परमेश्वर के प्रति जो हमारा साधारण भक्ति है, समर्पण, वो और भी बढ़ते जाना चाहिए, कम नहीं.
Bible speaks and encourages something like that, come back to your first love.
और बाइबल के अंदर ये इस प्रकार से लिखा गया है कि अपने पहले प्रेम के पास वापस लौटा.
It is written in Revelation and to the church in Ephesus Jesus was telling them.
और इफिसियों की कलीसिया को यीशु मसीह इस प्रकार कहता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में.
And by the way, those were excellent people.
और ये लोग बहुत ही उत्तम लोग थे यहाँ.
They good, they did a wonderful service to Jesus Christ and others.
उन्होंने यीशु मसीह को और लोगों की बहुत ही उत्तम रीति से सेवा की.
Jesus lot of good things to speak about them.
और यीशु मसीह के पास बहुत सारी अच्छी चीजें उनके लिए बोलने को है.
They could understand evil people.
और दूसरे लोगों को समझ पा रहे थे.
And they did everything good.
उन्होंने बहुत सब सारी चीजें बहुत अच्छे से की.
Now that is we can read that in Revelation chapter 2:2-3.
और वहां पे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 और 3 वचन में हम पढ़ते हैं.
I know your deeds and your toil and perseverance and that you cannot tolerate evil men and you put to test those who call themselves apostles and they are not and you found them to be false and you have perseverance and have endured for my name's sake and have not grown weary.
और मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया. तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं.
So Jesus is appreciating some of the exceptional good quality like toiling, forgetting everything, devoted to the work of the Lord.
और यहाँ पर यीशु मसीह उनके कुछ खास जो अच्छे गुण है उसके बारे में यहाँ पे सराहना करते हैं कि तुमने बुरे लोगों को देखा नहीं है और तुम्हारे परिश्रम और धीरज को जानता हूँ.
And they had tremendous perseverance when they were persecuted for their faith.
और जब उनके विश्वास के लिए उनकी ताड़ना या सता हुआ तो बहुत ही अद्भुत धीरज उनमें पाया गया.
They endured much conflict and persecution because for the sake of Christ.
और यीशु मसीह के लिए बहुत ही सताव से वो गुजरे.
And they were not tired.
लेकिन वे थके नहीं.
So these were wonderful qualities.
ये बहुत ही उत्तम गुण हैं.
But Jesus told them.
लेकिन यीशु मसीह ने कहा.
But
परंतु
I have something to tell against you.
मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है.
I appreciate that you did you have excellent character, you are done real, you are toiling for me, you are persevering for me, you are suffering persecution, all this.
और ये सारी चीजों की मैं सराहना करता हूँ कि तूने बहुत ही अच्छी रीति से धीरज धरा और बहुत ही अच्छा परिश्रम किया. ये सारी चीजें अच्छी हैं.
But you have left your first love.
लेकिन तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है.
So that is possible. We can be busy doing so many things, service for the Lord, everything, ever increasing. But we have to ask ourselves, have we left our first love?
और ये संभावना हमारे साथ भी हो सकती है कि हम बहुत ही व्यस्त होंगे, बहुत ही अच्छे कामों में, परमेश्वर की सेवा करने में, लेकिन ये पूछना है कि क्या मेरा पहला प्रेम मैंने छोड़ दिया है?
That is something saddens the heart of Jesus.
और यही यीशु मसीह के मन को, हृदय को दुखी करता है.
Jesus told them, therefore remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at first.
इसलिए स्मरण करती कि तू कहां से गिरा है और मन फिर और पहले के समान काम कर.
So this is something when desire in our heart and pray and seek for the grace of the Lord. Never that happened to me. Never let me fall from my first love.
और यही चाहत हमारे मन में रखे और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि प्रभु पहले का जो प्रेम मेरा तेरे साथ है उससे मुझे कभी गिरने ना दे.
And if fallen Lord, I want to come back to my first love.
और प्रभु अगर मैं गिरा हूँ तो प्रभु और मैं आपके पास वापस लौटना चाहता हूँ.
So what it says is no amount of service can replace our devotion to Jesus Christ.
यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो समर्पण, परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है उसका जो जो रिप्लेसमेंट कभी भी कोई भी सेवा नहीं हो सकती.
Our good Christian conduct and character, it is not a substitute for our devotion to Jesus Christ, our love for Jesus Christ.
और हमारा अच्छा आचरण, ये हमारा अच्छा चरित्र, ये सारी चीजें परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण जो है उसका जो replacement नहीं हो सकता.
This is an area where we all can actively repent and see to come back.
और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ही गंभीर रीति से हम पश्चाताप करके उसके पास आ सकते हैं.
There is an interesting incident written in the Old Testament in the Exodus.
और निर्गमन के अंदर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लिखा हुआ है
अबाउट हिब्रू स्लेव्स.
और वहाँ पे जो इब्रानी गुलाम थे,
देयर वाज अ रूल दैट समवन इज हायरिंग अ हिब्रू स्लेव.
और वहाँ पर ऐसा नियम था कि अगर तुम किसी भी इब्रानी हिब्रू अगर गुलाम को लेते हो,
आफ्टर 6 इयर्स ऑफ सर्विस ही हैज टू बी सेट फ्री.
और 6 साल के गुलामी के बाद उसको आपको आजाद करना है.
That is the Jewish law.
और ये यहूदी एक कानून था.
The master even though bought him with a price, he has no right after to keep him after 6 years. He is free.
और जो स्वामी उसको पैसे देकर गुलाम को लेकर आया, 6 साल के बाद वो पूरी तरह से वो गुलाम आजाद हो जाता है.
Legally he is free.
और कानूनी तौर पर वो पूरी तरह से आजाद हो जाता
है. But that scripture says that.
लेकिन वचन कहता है.
In Exodus chapter 21, 5 and 6.
और निर्गमन 21:5-6.
But if it reads like this, but if any of the slave plainly says, I love my master, even my wife and my children, I will not go out as a free man.
परंतु यदि वदा दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा.
So meaning he had freedom to go.
और यहाँ पे मतलब यह है कि उसके पास आजादी है कि वो वहां से आजाद होकर जा सकता है.
Legally he has fulfilled all his duties.
और कानूनी तौर से उसने अपनी सेवा को पूरा कर दिया और वहां से जा सकता है.
But he loved his master so much.
लेकिन वो अपने स्वामी से इतना प्यार करता है.
And he do not want to go.
और वो वहां से जाना नहीं चाहता.
He don't cherish that kind of freedom away from his master.
और उसके स्वामी से दूर होकर जो आजादी है उससे वो प्रेम नहीं करना चाहता.
And then it is written that if that is the case, the master shall bring their slave to God, and then he shall bring him to the door of the doorpost, and his master shall pierce his ear with an awl, and he shall serve him permanently.
वचन 6, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे.
So that it indicates very, it touched my heart. It really helped me टू चैलेंज माई सेल्फ आस्क माई ओन कमिटमेंट.
और यहाँ पे इस वचन में जो जो लिखा गया है उससे मुझे बहुत ही चुनौती मिली और मेरा परमेश्वर के प्रति समर्पण को मैं याद कर सका.
हिब्रू स्लेव्स कंडक्ट यू नो रिफ्लेक्ट्स हिज लव फॉर द टुवर्ड्स हिज मास्टर कंपेल्ड हिम टू बी हिज परमानेंट स्लेव.
और यहाँ पे जो इब्रानी जो गुलाम है उसका स्वामी का जो प्रेम है उसके प्रति इतना विवश करता है कि वो उसके जीवन भर उसकी गुलामी करने लगता करना तैयार हो जाता है.
ही वाज नॉट लुकिंग फॉर ए काइंड ऑफ फ्रीडम सो कॉल्ड फ्रीडम from slavery away from the master.
और वो अपने जो स्वामी है उससे बाहर जाकर जो आजादी है उसके अंदर वो आनंदित नहीं होना चाहता.
He had a choice to go.
और उसके पास चुनाव था कि वो वहां से जाए.
And he had a legal right to go.
और उस कानूनी तौर पर वो आजाद था.
But he chose to be with his master.
लेकिन उसने चुनाव किया कि वो अपने स्वामी के साथ रहेगा.
Life long.
और पूरी जिंदगी भर.
It's something which we can speak to us.
और ये हमारे अपने खुद के जीवन से बात कर सकते हैं.
Jesus when he chose his disciples.
जब यीशु मसीह ने शिष्यों को चुना.
Many people left Jesus.
बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए.
It's too hard.
और बहुत ही कठिन ये बात है.
No, I can't do all that I want to do. You know, some of them may be thinking that way.
और कुछ लोग सोचते होंगे जो मुझे करना है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ.
And many left Jesus.
और बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए.
So when the 12 left,
केवल जब 12 बच गए,
Jesus asked them.
यीशु ने उनको पूछा.
Are you all not going, dear ones?
तुम भी नहीं जाना चाहते मेरे प्रियो?
But then okay, we know they say, where shall we go? Words of eternal life with you, dear Lord.
और फिर हम देखते कि वो कहते कि प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? जीवन की बातें तो तेरे पास है.
So it is good to us, you know, is any the kind of attractions is compelling our us to deviate from our devotion to Jesus Christ.
हो सकता है कि दुनिया की जो सारे आकर्षण है वो परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण उससे हमें दूर करने की कोशिश करता हो.
I want to conclude.
और मैं इसे अंत करना चाहता हूँ.
We know the story of Martha and Mary.
और मार्था और मरियम की कहानी को हम जानते हैं.
I often something touched my heart is.
और मेरे हृदय को जो स्पर्श करता है.
When Martha was busy serving, which is a necessary thing.
और मार्था जब बहुत ही व्यस्त थी वो सेवा करने में बहुत ही वो जरूरी काम भी था.
Mary chose to sit at the feet of Jesus and to listen.
लेकिन मरियम ने चुनाव किया कि यीशु मसीह के कदमों पर बैठकर उसको सुने.
But Jesus said about something about Mary.
लेकिन मरियम के बारे में यीशु मसीह ने कुछ कहा.
Jesus said Mary has chosen that good part.
यीशु ने कहा कि मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है.
It was a choice.
और ये एक चुनाव था.
Mary has chosen that good part.
ये मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है.
And he also said that nobody will take it away from her.
और कोई भी वो उत्तम भाग उससे नहीं ले पाएगा.
So that is something which God spoke to me.
और इससे परमेश्वर ने मुझसे बात की.
I have a choice.
मेरे पास चुनाव है.
To commit myself to love Jesus and to be devoted to him.
और यीशु मसीह से प्रेम करना उसको समर्पित रहने के लिए.
And nobody else or nothing else should take it away from me.
और कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज मुझसे वो ले नहीं सकता.
May God really help us to be devoted to him.
और सच में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके प्रति समर्पित रहें.
May God give us grace to love Jesus supremely.
और परमेश्वर में अनुग्रह दे कि हम यीशु मसीह से सर्वोत्तम रीति से प्रेम कर पाए.
I remember once a young brother who came to faith through Hindu background.
और एक हिंदू पृष्ठभूमि से एक जवान भाई यीशु मसीह में आए.
Now he was saying something like this. Sometime when I sit for prayer in the morning.
और इस प्रकार वो कह रहे थे कि जब सुबह मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ.
I'll just sit silently.
और मैं शांत बैठता हूँ.
And I so much experience the presence of Jesus.
और मैं इतना अनुभव करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति का.
And I will not pray for anything.
और मैं किसी भी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा.
And I don't desire for any blessing or any favor or everything go will be through nothing.
और किसी भी आशीष के लिए किसी भी अनुग्रह की दृष्टि या किसी भी चीज के लिए मैं मांगूंगा नहीं.
The only thing I desire is enjoying the presence of Jesus.
और एक ही चीज की मैं इच्छा रखता हूँ वो है परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद मैं रहूं.
Silently enjoy the beauty of the presence of Jesus.
और बहुत शांत रीति परमेश्वर की उपस्थिति की खूबसूरती को मैं आनंद कर सकूं.
So that is a wonderful thing.
और ये बहुत ही अच्छी बात है.
We all can occasionally cherish such things.
और ऐसी बातें हमारे जीवन की हम जीवन में हम कई बार चाहत कर सकते हैं.
Period of prayer time may be a long list of things and complaints and about everybody, about God and you know something we are missing and
और हमारी प्रार्थनाओं के अंदर बड़ी बड़ी लिस्ट जरूरतों की और बहुत ही कुड़कुड़ाना या शिकायत से होने के बजाय
बट समटाइम वी कैन सीक टू एंजॉय रिफ्रेशिंग फुलफिलिंग जस्ट द प्रोसेस ऑफ जीसस
लेकिन उसके बजाय हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति जो संपूर्ण करने वाली उसमें हम आनंदित हो सकते हैं
somewhere something as if giving company to Jesus
इसका मतलब यह कि ऐसे शब्द की जो परमेश्वर की उसके साथ हमको उसके साथ कंपनी देता है
he wrote, you know, you're saying as if Jesus also was enjoying his company
और इसका मतलब वो कह रहे थे कि यीशु मसीह भी जो उसका जो संगति है उसको वो आनंदित आनंद ले रहे थे
so we all can seek for a personal intimate fellowship with Jesus
और हम सब यीशु मसीह के साथ वो बहुत ही निकटता का घनिष्ठ संबंध यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत चाहत रख सकते हैं
and our love for devotion Jesus Christ will ever grow
और हमारा जो प्रेम और परमेश्वर के प्रति समर्पण वो बढ़ेगा
than dim cold
और वो कम नहीं होगा
I'll be speaking from chapter 1 Peter chapter 1 verses 14
pehla patras ka pehla adhyay ka 14va vachan 14va vachan se
before that verse 13 says therefore prepare your minds for action be sober and set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ verse 14 as children of obedience not conforming yourselves according to your former lust and as is in your ignorance
aur 13 aur 14 ko hum aap apne apne bible mein padh sakte hain
so in verse 14 there's this word lust and ignorance so lust means a very strong desire for something
और यहाँ पे 14 वचन में लिखा गया है अभिलाषा के बारे में अभिलाषा के सदृश ना बनने के लिए यहाँ पे लिखा गया है
एंड द अदर वर्ड इज इग्नोरेंस व्हिच मींस नॉट नोइंग
और दूसरा बात है जो अंधे का जैसा नहीं रहना है
सो लस्ट कुड बी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एनीथिंग प्रॉब्ली सक्सेस और करियर और सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन व्हिच इज नॉट डिजायर्ड
और अभिलाषा एक ऐसी चीज हो क्या हो सकता है कि ऐसे कुछ कामयाबी के ऊपर अभिलाषा हो सकता है कुछ ऐसे विषयों के ऊपर जो हमें बहुत पसंद है
सो व्हाट आई गेट टू अंडरस्टैंड इज इट्स ओके टू लीव एवरीथिंग टू गॉड
और मैं ये सोचता हूँ कि जो सब कुछ है वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है
लेट अस सबमिट टू हिम इवन इफ थिंग्स डोंट गो वेल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स
और सब कुछ जो है परमेश्वर के बलबूते के ऊपर छोड़ना अगर चीज सही भी नहीं जाता है वो संभालेगा
इवन इफ देयर इज नो सक्सेस एज प्लान्ड और डिजायर्ड बाय मी स्टिल इट इज विद इन द प्लान ऑफ गॉड
और अगर कोई कामयाबी हासिल नहीं होता है अगर वो परमेश्वर की योजना में है उसमें परमेश्वर के अनुसार वो कामयाबी मिलेगा
एंड दैट इज गुड
और वो अच्छा होगा
द प्लान ऑफ गॉड इज गुड
और परमेश्वर का जो योजना है वो हमेशा अच्छा रहता है
ओबीडियंस रिक्वायर्स करेज
और आज्ञाकारी जो है उसको उसके लिए हमें हमारे लिए करेज की जरूरत है
एंड करेज कम्स फ्रॉम सबमिटिंग टू गॉड होल हार्टेडली
और वो जो है हमें जब हम समर्पण करते हैं पूर्णता से जब हम समर्पण करते हैं तभी हमें वो गंभीरता मिलता है
Because when we believe that, when I believe that God's plan is good, it makes me bold to ensure that I obey God.
और मैं मुझे जब पता होता है कि परमेश्वर का जो योजना जब सही है और जब मैं उसको विश्वास करता हूँ तो तभी मुझे वो अच्छा लगता है
And I will obey God, I will obey His commandments.
और तब मैं उसके आज्ञाकारी बनूंगी और उसका जो आज्ञा जो है उसका पालन करूंगी
And obedience is not with any ifs or buts
aur jo agyakari hai aisa nahi ki usme koi karna hai ya nahi karna aisa baat nahi hai uske andar
but total obedience is needed
ye ek purnatha se agya palan karna
it means
iska matlab ye hai
it means foregoing all old ways
aur iska matlab ye hai jo purane jo baatein hai vishay hai usko chhod dena
discarding your old self which is not pleasing to our heavenly father
aur jo purana jo manushyatva hai usko chhod dena jo parmeshwar ko pasand nahi karta hai us cheezon ko chhodna
so our father in heaven cares for you and me and just wants us to be children of obedience
aur parmeshwar jo swargiya parmeshwar hai wo humse prem karta hai aur yahi chahta hai ki hum uske agyakari bane
so the best example of a child who always obeyed god was
और जो अच्छा जो उदाहरण जो हमेशा जो परमेश्वर के जो आज्ञाकारी बनने वाला जो बालक का उदाहरण ये है,
इज हिज सन आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट,
और वो है प्रभु यीशु मसीह.
It's very important that we follow Jesus and be children of obedience.
और हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे होले, जैसे वो आज्ञाकारी बालक के समान अपने पिता का आज्ञाओं को पालन किया, वैसे हम उसके पीछे होले और उसके आज्ञाओं को उसका उदाहरण ले.
While I was reading this chapter, two things were most impressioning.
और जब मैं इस किताब में इस अध्याय को पढ़ रहा था तो दो चीज़ें मुझे अच्छा लगा.
One thing is as you read the first three verses.
और पहला जो तीन वचन को जब हम पढ़ते हैं.
So almost Peter explains how these people got saved maybe.
और वो लिखता है कि कैसे ये लोग जो है उनका उद्धार हुआ.
So in verse 2 we can see that according to the foreknowledge of God the Father,
aur ye jo hai jo parmeshwar ke gyan ke anusar
by the sanctifying work of the spirit,
aur pavitra atma ka pavitra pavitrata ke dwara,
to obey Jesus Christ and be sprinkled with this blood,
aur wo logon ne parmeshwar usne agya palan kiya.
So basically it is written that in the first verse I can say you are chosen so as to obey Jesus Christ.
और यहाँ पे ऐसा लगे तो मैं चुना गया कि प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं का पालन करने का.
But the process is that through the sanctifying work of the Spirit.
और ये जो होता है पवित्र आत्मा का पवित्र करने के द्वारा ही होता है.
So in a sense that God by His strength made them obey Jesus Christ and enabled them to be forgiven.
और परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा लोगों को वो अनुमति दिया, अनुग्रह दिया कि उस आज्ञा पालन को पालन करने का, और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें पवित्र किया.
द सेम थिंग अगेन वी कैन सी इन वर्स 3 आल्सो.
और वो तीसरा वचन में भी हम उसी बात को हम पढ़ते हैं.
सो हियर ही सेज दैट ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आशीषित है वो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर.
Who, according to His great mercy, has caused you to be born again to a living hope.
और उसके अनुग्रह से द्वारा उसने हमारा दोबारा जन्म होने के लिए उसने वो अनुमति दिया.
So it is very clear that God the Father, by His mercy, He caused us, He made us to obey Jesus.
और उसने उसके दया करुणा के द्वारा हमें वो आज्ञा पालन करने का वो अनुग्रह हमें दिया.
So this really helped me to understand when we say that. Fate, God started the faith and He will help us, finish it.
और ऐसा है कि परमेश्वर ने उस विश्वास को हमें दिया और उसी को खत्म करने के लिए वही सहायता करेगा.
So it helped me understand how He started. So He actually gave us the grace because through which we obey Jesus.
और ये ऐसा शुरुआत होता है कि वो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है जिससे उसका शुरुआत हुआ है.
This is one thing, and the second thing.
और ये एक बात है, दूसरा बात है.
I think throughout this chapter, Peter seems to tell these people to really wait for the coming of Jesus Christ.
और इस अध्याय में ऐसा पत्रस ये कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसके लिए रुकने के लिए.
So although they are going through many tribulations.
और बहुत कठिन परिस्थिति से और कोई बहुत परेशानी से वो लोग गुजर रहे हैं.
So on verse 5 we can read that you who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है 5 में, जिसका रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है.
On in verse 7 we can read that your faith may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ.
और साथ में ऐसा लिखा है जो विश्वास है वो महिमा का कारण बनेगा.
Again in verse 13.
और 13 में ऐसा लिखा है.
He summarizes by saying that prepare your minds for action, keep sober in spirit.
अपना बुद्धि को तैयार रखने के लिए कहता है और अपना कमर को बांधने के लिए कहता है और सहम को बांधने के लिए कहता है आत्मा में.
Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ.
और आशा को बांधने के लिए कहता है और प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए.
So what I understand is they are going through tribulations and he's asking them, we don't focus on what is happening now.
और वो लोग क्लेश से गुजर रहे हैं लेकिन वो कहता है कि उस क्लेश की तरफ तुम्हारे ध्यान को मत देखो.
Your whole focus is that you are saved for that that glory that God will give you when you meet Jesus Christ.
और तुम्हारा उद्धार हुआ है कि ताकि तुम उस 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 महिमा को देखो और जब तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ आप लोगों का मिलन होगा उस चीज को देखो.
So this was really challenging because we normally think that God saved us to have a good life in this world.
और ये एक चुनौती की बात है कि क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया कि ताकि इस संसार में एक अच्छा जीवन हम बिताएं.
Maybe a satisfying, loving life.
मतलब तृप्त होने का एक अच्छा एक जीवन.
But actually the main reason God saved us is not only for this world. The main focus is that after this world is destroyed, God will come to us and there is a glory that he will give us on that time.
Lekin mukhya karan yahi hai ki jab is sansar khatam ho jayega, ye prithvi khatam ho jayega, wo jo naya jo jeevan jo mahima jo parmeshwar jo dega aur wo uske andar wo anand ko hum uthaye, us anand ko hum dekhe.
So I understood that we have to, that is very new to me, so that we should focus on more about the what I will get at the revelation of Jesus Christ.
और मुझे इस चीज के ऊपर लक्ष्य देना है कि जब प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा मुझे क्या मिलेगा, उस चीज के ऊपर मुझे ध्यान देना है और आशा करना है.
Praise God for the words that God has revealed to us.
परमेश्वर को धन्यवाद जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया है, दिखाया है.
Last one week when I was sick and when I received the message that we have to, like he told, our brother told us to go through 1 Peter to meditate. So it took me to my flashback 2003 March.
और जब पिछले हफ्ते मैं बीमार थी और जब अबू ब्रदर ने मैसेज डाला कि ये अध्याय को पहला पत्रस को पढ़ के आने के लिए, जब मैं इसके ऊपर ध्यान कर रही थी मुझे 2003 मार्च का जो समय था उस समय में मैं पीछे चली गई.
आई वॉज रियली टच बाय दैट वर्ड इन 1 पीटर 8, दो यू हैव नॉट सीन हिम यू लव हिम एंड इवन दो यू डू नॉट सी हिम नाउ यू बिलीव इन हिम and are filled with an inexpressible and glorious joy, so that for you are the you're receiving the goal of your faith and the salvation of your soul.
Hum 8 aur 9 pad sakte hain apne apne bible mein wahan pe jo likha hai.
So I have experienced this because when I was, even though I was born in a Christian family, I did not know Christ, I did not love him.
और मैंने इस चीज़ को अनुभव किया, मेरा जन्म एक मसीहा परिवार में हुआ, फिर भी मैं उसको नहीं जाना.
ओनली वेन दैट इज अ डे वेन आई रिसीव्ड, लाइक यू नो आई, दिस एन अनसीन थिंग फॉर मी, वेन आई सॉ द लाइट ऑफ क्राइस्ट कमिंग इन टू माई लाइफ एंड टचिंग मी एंड हीलिंग मी ऑफ ऑल माई सिकनेस वंस फॉर ऑल.
और मैंने मैंने नहीं देखा, एक ऐसा विषय है जो परमेश्वर का जो ज्योति मेरे मुझे छुआ और मुझे चंगाई दिया.
सो आई फील दिस वर्स वॉज रियली फॉर मी बिकॉज इट वॉज एन अनसीन थिंग बट येट आई लव्ड हिम दैट टाइम.
और ये वचन जो है मेरे लिए, क्योंकि एक अनदेखा चीज़ है, जब वो रोशनी मुझे छुआ और मैंने वो चंगाई पाया.
इवन दो ही वॉज नॉट विद मी आई स्टिल बिलीव दैट ही इज देयर एंड ही इज लाइट इज कमिंग अपॉन मी एंड हीलिंग मी.
और वो नहीं है फिर भी मैं विश्वास करती हूँ कि उसका जो रोशनी जो है मेरे ऊपर प्रकट करता है और वो मुझे देखता है.
एंड दैट इज द टाइम आई फेल दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड हैज फिल्ड मी विद एन इनएक्सप्रेसिबल and glorious joy in my life.
और तब जाकर के मैं देखा कि वो जो पवित्र आत्मा का जो भरपूरी जो मेरे अंदर भरा और मेरे जीवन को बदल दिया.
And that is the day I think I started with my goal of my faith.
और उस दिन से मैंने मेरे विश्वास का शुरुआत किया.
And the salvation of my soul began from that day.
और मेरा आत्मा का उद्धार उस दिन से शुरुआत हुआ.
I always believe it's not my birth date as I was born. I always believe March 23rd, 2003 is the birth of mine because Christ gave me a new life that day.
और जिस दिन मेरा जन्म हुआ वो मेरा जन्मदिन मैं नहीं मनाता, जिस दिन मेरा उद्धार हुआ मार्च के तारीख 23/2003 में, उस दिन को मैं अपना नया जन्म मानती हूँ कि उस दिन परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया.
I also would like to ask everyone to read 2 Corinthians 4.
और दूसरा करिन्थियों और 4 को आप पढ़िएगा अपने अपने बाइबल में.
From 16 onwards.
उसका 16 वचन के 16 वचन.
Where Jesus clearly says we should not lose heart.
वहाँ पे ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपना हृदय को होने नहीं देना है.
यू नो आर outwardly is perishing or wasting. I have seen my, you know, outward appearance during my sickness, the way it had become. I had become so ugly. I can now also feel it.
और जो बाहर से जो मेरा चीज जब बदलने लगा और मतलब बेकार होने लगा उस जब मैं बीमार गिरी तब वो मैंने देखा मेरे जीवन में.
So he's saying, do not lose heart because your outward is saying outwardly you're wasting or it's perishing, but see your inward which has been renewed each and every day.
वो अपने हृदय को खोने मत देना बाहर की चीज़ों को देख करके, लेकिन अंदर की चीज़ों को देखना कि वो कैसा है.
एंड दिस रिन्यूअल इज ओनली कमिंग बिकॉज आर होप इज इन क्राइस्ट.
और वो बदलाव जो है इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो आशा है वो प्रभु यीशु मसीह में है.
बिकॉज ही इज ओनली वन हु इज हैविंग द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ.
और उसी के पास अनंत जीवन का वचन है, वह शब्द है.
Even though we say the, you know, the afflictions that we are going through may be momentary, for only for a particular moment or particular period it may be.
और जो क्लेश और जो कष्ट और जो है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए हो सकता है, थोड़े समय के लिए ही है.
But that also strengthens us and takes us to the eternal glory, which will outweigh all the other things that come in our life.
और वो जो क्लेश और तकलीफ जो है वो हमें और दृढ़ करता है और ताकत देता है कि अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए.
So I'm very encouraged by the last word which says that what is seen is temporary.
और उसमें अंतिम भाग में ऐसा लिखा है जो आप देखते हो सिर्फ कुछ समय के लिए है.
But what is unseen is eternal.
और जो आप नहीं देख सकते वो अनंत के लिए है.
So we need to focus our eyes and our heart mostly on the unseen things because we know that is the eternal life that God has kept for us.
और हमारा जो लक्ष्य जो है जो हम नहीं देख सकते हैं जो अनंत है उस चीज के ऊपर हमारे लक्ष्य को बढ़ाना है.
Praise God.
परमेश्वर के नाम का स्तुति हो.
I was also reading from Song of Solomon last 2-3 weeks.
और श्रेष्ठ गीत से कुछ विषयों को पढ़ रही थी पिछले हफ्तों में.
Never I enjoyed the book the Song of Solomon in my life.
कभी मैंने वो आनंद नहीं उठाया इस किताब से पहले.
But 2-3 weeks before I read this book in at a stretch one day I sat and I read this because my heart was Lord was speaking to me the love towards him about that.
और मैंने दो तीन हफ्ते पहले एक ही बार में मैंने उस किताब को खत्म किया पढ़ा और परमेश्वर ने उसके प्रेम जो है वो मुझे दिखाया और मुझसे बातें किया.
So I thought but the sex from him I heard that this is you all everyone should meditate on this book relation with the husband and the relation with our heavenly bridegroom.
और सब जो है जैसे जैक भाई बताते हैं इसको पढ़ना है, सब लोग पढ़ना है. ये जो है हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध के बीच है और पति पत्नी के संबंध के बारे में है कि कैसा रहना है उस चीज़ के बारे में हम देख सकते हैं.
रियली गॉड स्पोक टू मी ए लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग माय रिलेशन विद माय हस्बैंड एंड माय रिलेशन विद जीसस.
और इससे काफ़ी कुछ चीज़ें परमेश्वर ने मुझे दिखाया और सिखाया मेरा जो संबंध मेरे पति के साथ और मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है.
Before the bride that bride's wedding she was speaking 1:7 tell me O you whom my soul loves where do you pasture your flock where do you make it lie down at noon. So she was searching for him.
यहाँ पे एक का साथ में यहाँ पे जो दुल्हन जो है वो दूल्हा को ढूंढती है और वो कहती है कहाँ पे हो तुम.
And in chapter 2:5 was sustain me with the raisin cakes refresh me with the apples because I am lovesick.
और यहाँ पे दो का पांच में भी वो कहती है मुझे संभालने के लिए. वो यहाँ पे लिखती है मुझे संभालने के लिए.
She is missing him like anything that she because I am lovesick.
और यहाँ पे वो उस कमी को महसूस करती है और उस कमी को महसूस करते हुए वो उसको याद करती है.
एंड शी इज सीइंग अ ड्रीम इन चैप्टर 3
और 3 में हम देखते हैं कि वो एक स्वप्न देखती है.
इन 3:4
उसका 3:4 में
when I found him whom my soul loves I held on to him and would not let him go
और फिर वो 3:4 में लिखते जब मुझे मैंने मैंने मुझे मिल गया तो उसको पकड़ रखा और उसको पकड़ के रखी थी
in that dream she was searching for him she was in the street and she was searching and she was asking the watchman have you seen him whom my soul loves
और यहाँ पे वो स्वप्न में देखती है और खोजती रहती कि जिसको वो प्रेम करती है वो कौन है और कहाँ पे और इवन वहाँ पे जो चौकस करने वाले से भी पूछताछ करती है कि क्या आपने देखा है मेरे प्रेमी को कि कहाँ है और आपने देखा है क्या
बट दे कुड नॉट हेल्प हर बट शी अलोन व्हेन देन शी फाउंड हिम
और फिर वो लोगों ने सहायता नहीं किया फिर वो अकेले जा कर के फिर उसको खोज के उसने निकाल देखा
व्हेन शी फाउंड हिम व्हाट शी इज डूइंग आई हेल्ड ऑन टू हिम
और फिर जब उसने उसने खोज के देख पा लिया था उसको पकड़ के रखी
एंड वुड नॉट लेट हिम गो
और उसको जाने नहीं दिया
दैट वाज हर लव दैट इज रियली स्पोक टू माय हार्ट हाउ इज माय लव टुवर्ड्स जीसस
और ये एक सच्चा प्रेम है और परमेश्वर ने मुझसे बातें की है कि मेरा जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसा है
इज दिस काइंड ऑफ लव टुवर्ड्स हिम माय हार्ट इज यर्निंग फॉर हिम लाइक दिस
क्या मेरा प्रेम वैसा ही है क्या वही चाहत के साथ वही खोज के साथ मेरा प्रेम वैसा है क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए
इन चैप्टर 1:4
एक का चार में हम देखते हैं
ड्रॉ मी आफ्टर यू एंड लेट अस रन टुगेदर
यहाँ पे कैसे वहाँ पे ऐसा लिखते हैं मुझे खींचना तेरे तरफ ताकि हम दोनों साथ में भागेंगे चलेंगे
दैट रियली स्पोक टू माई हार्ट दैट इफ आई हैव ए डिसायर टू लव हिम
और मेरे अंदर वो इच्छा है उसको प्रेम करने का
And then if I am telling God, Jesus, draw me.
और फिर मैं ऐसा कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह प्रभु मुझे प्रभु यीशु मसीह आप मुझे खींचना
इफ आई हैव अ डिजायर ही विल श्योरली ही विल ड्रॉ मी टुवर्ड्स हिम
और मेरे अंदर वो इच्छा है जरूर वो मुझे खींचेगा उसके तरफ
आई नो नीड टू गो आफ्टर देम बट ही विल ड्रॉ मी
मुझे उसके पीछे जाने देना वो मुझे खींचेगा और ले जाएगा
ओनली आई नीड दैट आई डिसाइड टू लव हिम
मेरे अंदर वो इच्छा होना चाहिए कि मुझे उससे प्रेम करना है
That really encourage my heart that if I tell Jesus help me to love you I want to love you he will draw me
और ये मुझे उत्साहित किया जब मैं प्रभु यीशु मसीह से कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तुम मुझसे प्रेम करना मुझे सहायता करना तो वो मुझे खींचेगा और मुझे 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 खींच के लेगा
and 1:6
एक अच्छे
do not stare at me because I am dark
और यहाँ पे ऐसा लिखा कि मुझे जो है ऐसे ही दूर मत करने के लिए और अंधे का नहीं करना क्योंकि मैं काली हूँ
फॉर द सन हैज बर्न्ड मी
क्योंकि सूर्य जो है मुझे जला दिया है
माय मदर्स सन्स वर एंग्री विथ मी
और मेरा जो माता के जो पुत्र हैं वो भी मुझसे गुस्से के साथ देखते हैं
दे मेड मी केयर टेकर ऑफ द विनियर्ड्स
और उन्होंने मुझे जो दाख की बगीचा का मुझे देखभाल करने को लगाया
बट आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई ओन विनियर्ड
और मैंने सिर्फ मेरा खुद के बगीचा को मैंने देखभाल नहीं किया
सो शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ अदर विनियर्ड्स
वो दूसरे की जो 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 खेती का वो देखभाल करती थी
सो बिकॉज ऑफ दैट दैट मीन्स माई लॉर्ड्स वर्क व्हाट आई एम डूइंग फॉर द लॉर्ड
और जो जो परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर के लिए मुझे क्या करना है
शी वॉज दैट इज दैट अदर विनियर्ड्स
और वो जो है वो दूसरा दूसरा जो खेत है
दैट शी वॉज टेकिंग केयर
वो दूसरा जो खेत का वो देखभाल करती थी
बट शी वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेर ओन विनियर्ड
और उसकी जो खेत और उसकी जो दाखलता का जो खेत था वो उसका उसकी देखभाल नहीं कर पाई
हर ओन विनियर्ड मीन्स माई लाइफ एंड माई डिवोशन टू जीसस
और उसका खुद का जो 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 खेत जो है उसका जो लक्ष्य और उसका जो जो भक्ति जो है परमेश्वर के वो खेत
शी डिड नॉट टेकन केयर ऑफ दैट
और उसका उसने ठीक तरीके से देखभाल नहीं किया
शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ लॉर्ड्स वर्क
और
लॉर्ड्स वर्क
शी वॉज टेकिंग केयर
ऑफ लॉर्ड्स वर्क
वो परमेश्वर की जो काम को वो संभाल रही थी
Because of that, she became dark.
और उसके कारण वो खाली हो गई थी.
She was out all the day and taking care of other vineyards, and she became dark.
और वो दूसरों का खेतों की देखभाल कर रही थी इसलिए वो खाली हो गई थी.
But if I am taking care of my own life and my own devotion to Jesus, I will never become dark.
और जब मैं मेरा ही देखभाल करती हूँ और मेरे ही चीज़ों को अगर मैं देखती हूँ तो मैं कभी मैं खाला नहीं हो पाऊँगा।
बिकॉज इन एफिशियंस 5:27
और एफिशियों का 5:27 में
दैट ही माइट प्रेजेंट टू हिमसेल्फ द चर्च इन ऑल हर ग्लोरी हैविंग नो स्पॉट और रिंगल और एनी सच थिंग बट दैट शी वुड बी होली एंड ब्लेमलेस।
5:27 पढ़िएगा अपना अपना किताब में।
सो If I am really taking care of my love and my devotion to Jesus, my glory will increase.
और जब मैं मेरे ख्याल रखती हूँ और मेरा जो भाग है परमेश्वर के लिए जो भक्ति का जीवन जब मैं उसके ऊपर मैं देखती हूँ तो मेरा जो जीवन जो पवित्र जीवन जो बढ़ते रहेगा।
Jesus' glory is will increase in my life more and more.
और प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा जो है मेरे अंदर और बढ़ते रहेगा।
That years going, but my beauty will increase.
और जैसा दिन जैसा साल चलता रहेगा वैसा जो सुंदरता जो है वो महिमा का जो सुंदरता वो बढ़ते रहेगा।
इन द इन अर्थली ब्यूटी दैट व्हेन वी बिकम ओल्ड आवर ब्यूटी फेड्स।
और इस पृथ्वी में जब जैसे हम लोग रहते हैं जो इस पृथ्वी का जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगा थोड़े समय के बाद।
स्पॉट एंड रिंगल ऑल यू कैन सी इन आवर फेस।
और हम देख रहे हैं सी कि वो जो खूबसूरती है वो बिगड़ती जाएगी थोड़े समय के बाद और रिंकल्स गिरने लगेगा।
बट व्हेन आई एम लविंग जीसस माय ब्यूटी इज इंक्रीसिंग।
और जब मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते रहती हूँ तो तभी वो जो सुंदरता वो बढ़ते रहता है।
Having no spot or wrinkle or any such thing.
और कोई भी जो है वो एक 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 दाग भी नहीं रहेगा।
Jesus can make me like that.
और प्रभु यीशु मसीह वैसा करेगा।
That is his work in my life.
और ये उसका काम है मेरे जीवन में।
His life will increase in my life and my glory that life of Jesus will radiate in me.
और उसका जो काम है मेरे अंदर और बढ़ेगा और उसका महिमा मेरे द्वारा प्रकट होगा।
सो व्हेन आई एम डूइंग दैट अदर्स कैन सी दैट ग्लोरी एंड दे विल आल्सो टेम्प्टेड टू फॉलो जीसस।
और जब ऐसा मैं जब करती हूँ तो दूसरे लोग जो है उस चीज़ को देखेगा उस महिमा को देखेंगे और वो लोग भी उनके अंदर भी वो उत्साहित आएगा कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे।
लाइक पॉल सेड फॉलो मी।
जैसे पौलुस कहता है कि मेरे पीछे हो लेना।
अदर्स आल्सो विल सी दैट ग्लोरी जीसस ग्लोरी इन माय लाइफ एंड दे विल आल्सो हैव दैट डिसाइड टू फॉलो जीसस।
और दूसरे लोग भी वो महिमा को देखेंगे और उस महिमा के द्वारा वो लोग भी प्रभु परमेश्वर के पीछे होएंगे।
प्रभु का धन्यवाद जो वचन मैं आज सुने बहुत ही प्रोत्साहित वचन थे कि मेरा जो समर्पण आज परमेश्वर के प्रति कहाँ है वो देखना था। और जब पहला पत्रस मैं पढ़ रहा था तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और कुछ चीज़ों ने मुझे बहुत ही चुनौती भी दिया। उसमें से पहला वचन जो लिखा हुआ है कि पत्रस की ओर से पहला पत्रस पहला अध्याय एक वचन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेसियों के नाम जो पुंतुस गलातिया आसिया बिथनुमिया में तितर बितर होकर रहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो शब्द जो है कि परदेसियों के नाम हम देखते हैं कि अगर भारत के अंदर बहुत ही उच्च स्तर की कोई मिनिस्ट्री में अगर जाना है तो आईएएस का एग्ज़ाम होता है वो क्रैक करना पड़ता है। उनको बहुत ही उच्च पदवी किसी को भी चुनाव नहीं करते हैं किसी भी उच्च प्रकार की कक्षा के लिए एक 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 एग्ज़ाम होता है जिसको पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी को भी ऐसे ही चुनाव नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परदेसियों के नाम उस समय के अंदर यहूदी लोग सोचते थे कि उद्धार जो है यहूदियों में ही प्रकट होगा मसीहा जो है केवल यहूदी इसराइली लोगों के लिए आएगा वो अपने आप के खास प्रजाति मानते थे। लेकिन यीशु मसीह आया उसने सब कुछ बदल दिया और उसने वो उद्धार वो जो हम सभी यहाँ पर जो बैठे हैं उन सबों के लिए जो परदेसियों के नाम। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था कि प्रभु मैं एक यहूदी नहीं लेकिन आपने आपके उद्धार वो जो है मुझ तक पहुँचाया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। दूसरा वचन जो कहता है कि परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार अंतिम वाक्य तुम चुने गए हो। यहाँ पे एक वचन लिखा है कि भविष्य ज्ञान के अनुसार कि परमेश्वर ने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले वचन में लिखा है कि माता के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। इस बात से बहुत ही सुरक्षा मेरे जीवन में आ जाएगी कि जब मैं जान लूँगी कि परमेश्वर मेरे भविष्य को पहले से ही जानता है। उसने तब मुझे चुना तब मैं कभी भी उसको जानता नहीं था जब मैं पाप में था। परमेश्वर ने जब जगत की उत्पत्ति हुई तब मैं उसके मन में था। इस भविष्य ज्ञान को जानना अपनी बुद्धि से बहुत ही असंभव मुझे जानता है कि कैसे परमेश्वर सब कुछ पहले ही जानता था, जब जगत की उत्पत्ति हुई तब उसने मेरा नाम जाना, कैसे वो अनंत काल तक मुझे जानता है, ये सारी चीज़ें अपने बुद्धि ज्ञान से समझना बहुत कठिन है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात मुझे जो सिक्योरिटी देता है, सांत्वना देता है, ये कि भविष्य ज्ञान के अनुसार मैं चुना गया हूँ, मेरा चुना हुआ है। जब मैं मूर्ख हूँ, जब मैं पापी हूँ, जब मैं गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, किसी भी भले काम के लिए मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, तब परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार मुझको चुना है। और ये बहुत ही प्रोत्साहित देता है, जब कभी मुझे लगता है कि मेरी योग्यता नहीं है, जब कभी मुझे अपनी नज़रों में मुझे दोषी ठहराता हूँ मेरे पापों के कारण, मेरे गिराहट के कारण, तब मैं अपने आप को याद दिला सकता हूँ कि परमेश्वर ने भविष्य के उसके ज्ञान के अनुसार मुझको चुना है। भले आज मैं गिर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे कल जो विजय से भरा हुआ है, जो आनंद से भरा हुआ है, उसको परमेश्वर ने देखा है। और उतना ही नहीं, लेकिन अनंत काल परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। दूसरा जो प्रोत्साहन मुझे मिला, 6 वचन में लिखा है, तुम मगन हो यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, लेकिन यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। इससे प्रोत्साहन मुझे मिला कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो उसके सामने कौन सी बातें महिमा और आदर के योग्य ठहरेगी, वो है मेरा परखा हुआ विश्वास। मुझे लगता है कि मेरे कार्य, मेरे परमेश्वर के लिए बलिदान जो मैंने किया है, मैं परमेश्वर के लिए कैसे ले जिया हूँ, वो सबसे बढ़कर परमेश्वर परखा हुआ विश्वास, एक विश्वास है और दूसरा है परखा हुआ विश्वास। पौलुस इसलिए लिखता है कुरिन्थियों में कि जब तुम उस संकट से गुजरते हो उसके अंदर तुम आनंद मनाओ, उसमें तुम उसमें घमंड करो, क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध होता है। परखा हुआ विश्वास, तो मुझे आनंदित रहना है कि भले परिस्थितियों को मैं आज नहीं समझ पाता हूँ, हालातों को, प्रश्नों को, लेकिन उसके अंदर एक परखा हुआ विश्वास ही है जो परमेश्वर के सामने होगा। और अंत में 15 वचन के अंदर जो चुनौती मैं अपने जीवन के लिए लेता हूँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमको पवित्र बनने के लिए सारे चाल चलन के अंदर वो दे रहा है। और जब अपने जीवन को देखता हूँ तो प्रभु लगता है कि प्रभु बहुत अच्छा ये वचन है, लेकिन मैं उस स्तर तक अभी तक नहीं आ पा रहा हूँ। प्रभु पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, एक स्तर परमेश्वर ने रखा कि जैसे वो पवित्र है मुझे देखना है। जब मैं अपने जीवन को जांचता हूँ मुझे लगता है कि प्रभु मैं उस स्तर तक अभी नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन जब मैं यीशु मसीह की ओर ताकता हूँ मुझे एक आशा और उम्मीद मिलती है। अगर मुझे देखना है कि यीशु मसीह, मुझे अगर पवित्र होना है तो मुझे देखना है यीशु मसीह कैसे पवित्र हुआ है उसके जीवन के अंदर, जब उस धरती पर था कैसे उसने अपने आप को पवित्र बनाया। जब वचन कहता है सब प्रकार से वो परीक्षण में पड़ा लेकिन फिर भी वो निष्पाप निकला, मैं चाहता हूँ कि वही जीवन जो यीशु मसीह ने जिया, वो नम्रता से भरा हुआ जीवन, कितना नम्र वो था, कितना अलग उसके जो गुण थे, जो चरित्र थे, उसके जो नियम थे, वो संसार से कितने विपरीत थे। जब संसार ऊपर जाने के लिए कंपटीशन को करता है वो लोगों के शिष्यों के पैर को धोता है, और जो ये परमेश्वर के प्रति उसका जो डिपेंडेंसी था उससे वो पवित्र बना। मैं चाहता हूँ कि इस वचन में जो पवित्र बनने का कार्य है वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। मैं कितने भी अपने प्रयत्नों से पवित्र बनने की कोशिश करूँ कि नहीं, यहाँ लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, जितनी बार मैं अपने प्रयत्नों से करूँगा उतनी बार मैं गिरूँगा, और मैं बहुत बार गिरा हूँ, गिरता हूँ, लेकिन जब मैं यीशु मसीह को देखता हूँ, उस यीशु मसीह जो मेरा उदाहरण है, जिसके पीछे मुझे चलने के लिए बुलाया है, तब मुझे एक आशा मिलती है। और उसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि प्रभु तू मुझे पवित्र बनाएगा, तूने जब मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है तो तू ही मुझे हर एरिया के अंदर, जहाँ मैं आज गिर रहा हूँ उस एरिया के अंदर, ज़रूर तू पवित्र बनाएगा, ओवरकमिंग लाइफ को देगा।
I would like to share from verse 6 and 7 from 1 Peter 1. 1 Peter 1, verse 6 and 7. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed.
1 Petrus 1:6-8 vachan.
So while I was reading this, one thing that came into my mind was like, our real nature comes out only when we are being tested.
और जब मैं इसको पढ़ रही थी कि हमारा जो खास जो हमारा जो असली जो स्वभाव है तभी हमारा बाहर निकलता है जब हमारी परख होती है.
देयर आई कुड रियलाइज वेदर आई एम लाइक क्राइस्ट लाइक और इज द ओल्ड मैन स्टिल लिविंग इन मी.
और तब मैं एहसास करती हूँ कि क्या मैं यीशु मसीह के समान बन रही हूँ या फिर मेरा पुराना मनुष्यत्व मेरे जीवन में जी रहा है.
सो वेन द टेस्ट कम्स देयर वी कुड रियलाइज लाइक एम आई लिविंग अ लाइफ प्लीजिंग टू गॉड और आई एम स्टिल लिविंग अ लाइफ दैट प्लीजेस टू मी.
और जब परख आती है परीक्षा होती तब मैं अपने आप को जान पाती हूँ क्या मैं यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला या खुद को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रही हूँ.
द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू प्यूरिफाई अस टू मेक अस लाइक हिम होली.
और ये जो उद्देश्य इस परीक्षाओं का है कि हमको परीक्षा के बाद हमको उसके समान पवित्र करे.
सो दिस रियली चैलेंज मी दैट वेन आई एम बींग टेस्टेड इज माई लाइफ रिविलिंग जीजस एम आई लिविंग अ लाइफ That glorifies and honors him.
और इससे मुझे चुनौती मिली कि जब मैं परीक्षण में पढ़ती हूँ क्या मैं परमेश्वर के यीशु मसीह को वहाँ पर रिवील करती हूँ या परमेश्वर को प्रसन्न करती हूँ या नहीं.